कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
जय राधा माधवा कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी
गोपी जना गिरिवर धारी
यशोदानंदन गदगन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यमुना तीरा मन चारी
यमुना तीरा मन चारी
यमुना तीरा मन चारी
यमुना तीरा मन
बिहारी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम आप सबको स्वागत करते हैं ये 21 दिन की भगवान कृष्ण की व्रज लीलाएं, जिसमें उन्होंने अलग अलग असुरों को और आसुरी प्रवृत्तियों का वध किया। कल हम बता रहे थे कि भगवान के नित्य लीला होते हैं भगवत धाम में, और इस दुनिया में भगवान नैमित्तिक लीला करते हैं। इस नैमित्तिक लीला में वृंदावन छोड़कर मथुरा द्वारका जाना और इस तरह विविध असुरों को वध करना। भगवान के धाम में असुर नहीं है, लेकिन असुरों का आभास है उधर, असुरों का आवाज सुनाई देता है तो भक्त लोग भगवान के पास दौड़ते हैं, लेकिन असली रूप में उधर असुर नहीं है भगवान के धाम में। लेकिन इस दुनिया में जब भगवान अवतरित होते हैं नैमित्तिक की लीला में, असुर आते हैं और असुरों का वध भी होता है। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे ये असुरों का वध ही नहीं, साथ साथ कृष्ण के मधुर लीला का भी चर्चा होगा। क्योंकि इस दुनिया में मायावादी मायावादी करके बोलते हैं, बौद्ध लोग मायावादी लोग, ये लोग अवगुणों को निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान संबंधित लीलाओं को सुनकर सद्गुणों को जगाने के लिए कुछ उपाय नहीं उनके पास, सिर्फ वो नकारते हैं। जैसे अगर कोई किसी को स्वीट रेस दिया जाए, वो स्वीट रेस के अंदर अगर पत्थर हो, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो, अगर खाते खाते हताश हो जाएगा वो, मीठा तो है ही, लेकिन मीठापन के साथ साथ अगर बीच बीच में मिट्टी आएगा, पत्थर आएगा, तो कहीं से कहाँ खा पाएगा वो। तो निर्विशेष लोग बोलते हैं, अरे ये जो स्वीट रेस कार्य है इसलिए समस्या है, सिर्फ भात खाओ, चावल खाओ बस, किसी भी तरह का स्वीट खाना भूल जाओ, रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन नहीं, स्वीट रेस नहीं, स्वीट खाने से समस्या होता है, सिर्फ भात खाओ। इस तरह से निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं, उनको इस दुनिया के विविधता देखकर वो लोग डर जाते हैं, विविधता से ही दुख पैदा होता है, इसलिए विविधता नहीं चाहिए हमको, शांति 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 चाहिए, तो उसमें जाना चाहते हैं। और बौद्ध लोग बोलते हैं, अरे खाने से ही समस्या होता है, तुम्हारे दांत में पत्थर आ जाते हैं, खाना ही बंद कर दो बोलते हैं। ये कौन है? बौद्ध लोग हैं। बौद्ध लोग बोलते हैं तुम्हारी इंद्रियों से तकलीफ होता है, तुमको इंद्रियों को ही नकार दो। तो इंद्रियों को जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो करके तीन बंदर देखा होगा आपने, ये बौद्ध लोगों का ऐसा ही है, इंद्रियों को ही नकार दो। तो बौद्ध लोग बोलते हैं इंद्रियों को नकारो, बंद कर दो। मायावादी लोग बोलते हैं विविधता को नकारो। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में हम सीखते हैं जिस तरह इस भौतिक दुनिया में भौतिक विविधता है, इसी तरह भगवान के धाम में आध्यात्मिक विविधता है। उधर आप देख सकते हैं गोप हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, हिरण हैं, मोर हैं, यमुना बह रही है, यशोदा मैया है, नंदा बाबा है, विविध लीलाएं चल रहा है भगवान के। तो हम लोग उन विविधता जो है आध्यात्मिक विविधता, उसके बारे में भी हम सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे। लेकिन लीलाओं के साथ साथ इस दुनिया में जब हम लोग भक्तिमय जीवन में भी जुड़े हो, उस भक्तिमय जीवन में भी कभी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि कुछ संग के कारण उन दुर्व्यवहारों को, अवगुणों को कैसे निकाला जाए, ये सीखने के लिए हम भगवान कैसे असुरों का वध करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे उसके द्वारा। इस तरह हमारे अवगुण भी निकल जाएगा, साथ साथ भगवान की ओर प्रीति भी जग जाएगी। तो हमें दोनों चाहिए हमको। जैसे अगर आपको बोलता हूं कि आपको मिट्टी नहीं चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए स्वीट रेस में, तो ठीक है पत्थर निकाल देते हैं, और पत्थर ना होकर आपको स्वीट रेस दिया जाए तो कितना खुश होंगे आप, है ना। तो ऐसे ही भगवान की लीलाओं को भी हम सुनकर भगवान की ओर प्रीति बढ़ाएंगे, साथ साथ असुरों की वधु के बारे में सुनकर हमारे मन में हृदय में जो असुर है उनको कैसे निकाला जाए वो भी, उसके बारे में भी हम समझेंगे, दोनों समझेंगे हम। तो आज पूतना वध का पहला असुर का वध की चर्चा होगा। ये दशम स्कंद के छठा अध्याय में पहला श्लोक आपके पास है। श्री शुक उवाच नंदपति वच शौरैर नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकितः। पढ़िए।
शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली, अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए।
किधर पढ़ रहे हैं? दिस इज 10.6.1। इधर बताया गया है नंद पति वच शौरैर। शौर शौर कौन है? ये वसुदेव है। नंद बाबा आए थे मथुरा में कर कंस को भरने के लिए। क्यों? नंद बाबा ने सोचा इधर कृष्ण का जन्म हुआ है और मेरा मैत्री है वसुदेव के साथ, हम दोनों बहुत निकट मित्र हैं। कंस के लोग वसुदेव के एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इतने बच्चों को मारा है, तो उनके साथ मैत्री होने के कारण मेरे बच्चे को भी मारने डाले, इसलिए मेरे बच्चे को बचा कर रखने के लिए मैं 3-4 साल के लिए पहले से कर दे दूंगा कंस को। कंस और उनके पुलिसमैन कोई नहीं आएंगे, टैक्स कलेक्टर कोई नहीं आएंगे नंद गोकुलम में, उनका पांव ही पड़ेगा नहीं नंद गोकुलम में, इतना हम टैक्स भर के आ जाएंगे हम। इस तरह सोचकर नंद बाबा पहुंचे उधर मथुरा में। उस समय मथुरा में वसुदेव थे, लेकिन वसुदेव ने नंद बाबा को अपने घर नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि अगर अपने घर लेके जाते थे नंद बाबा को, नंद बाबा को देखते ही देवकी पूछ सकती थी हमारा बच्चा कैसा है, खाना कैसा है, ठीक है क्या। तो कम से कम अनेक लोग जासूस थे जो ढूंढ रहे थे कि वसुदेव की 8वां पुत्र होने के बदले पुत्री हुई, उसको देखकर राजा को बड़ा शंका हुआ। अरे देवी देवताओं ने घोषणा की थी पहले कि वसुदेव के 8वां पुत्र मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र के बदले पुत्री बनी, क्या देवता लोग भी झूठ बोलते हैं क्या, ऐसे उनके मन में विचार उठा कम से कम। लेकिन तब उस पुत्री को लेकर मारने के लिए पांव पकड़कर एक पत्थर के ऊपर ठोकने के लिए उसने प्रयत्न की, उस समय उड़ गई आसमान में, ऊपर से देवी ने आकाशवाणी में उनको देवी ने बोला, अरे मूर्ख कम तुमको मारने वाला 8वां पुत्र कहीं और उसका जन्म हो गया है ना। जब उसने सुना तो इसके कारण कंस के जासूस लोग वसुदेव और देवकी के संबंध में बहुत ख्याल रखते थे कि कुछ उनके घर में कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, क्या बातचीत होता है, दीवार को भी कान है तो अगर सुन लेंगे तो जाकर बता देंगे राजा को। इसलिए वसुदेव को बहुत डर था कि मैं भी नहीं जाकर देखना चाहता हूँ नंद गोकुलम में, क्योंकि अगर मैं नंद उधर गोकुल महावन में बच्चे को देखने के लिए जाऊंगा मैं तो जासूस लोग भी पीछे पीछे आएंगे। जैसे एक मधुमक्खी होता है, मधु को एक छत्ता में इकट्ठित करके रखता है ना, अगर मधुमक्खी इधर मधु को उठा उठा कर लेके जाकर अपने घर में रखेगा तो किसान लोग पहचान लेते हैं किधर उसका घर है, बाद में एक मशाल लेके जाकर उसको भगा देते हैं, सब मधु को ले लेंगे, है कि नहीं। इसी तरह मैं कृष्ण को देखने के लिए बार बार जाऊंगा तो जासूस लोग जाकर पता कर देंगे किसको, कंस को, तो कंस भी जाकर बच्चे को लेकर आकर मारने के लिए प्रयत्न करेगा कृष्ण को। इसलिए वसुदेव ने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नंदा बाबा आए हैं, वसुदेव ने देखा कोई नहीं है निकट, तब नंदा बाबा को बुला लिया। उधर ही पत में भी, उधर पत में ही एक बैलगाड़ी था, उधर ही ऊपर बैठे थे वसुदेव, नंदा बाबा को बुला लिया, ऐसे गुहे तरीके से उनको पूछा आपका बेटा कैसा है, तो घर नहीं लेके गए उनको। ये पहली बात बताया जा रहा है, नंद पतिवत शौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उन्होंने नंद महाराज को बोला वसुदेव ने, अच्छा आप उधर छोड़कर, आपके बेटा काना को छोड़कर इधर आए हैं क्या आप जल्दी जल्दी वापस लौट जाइए, उधर कुछ कतरा होने की संभावना है, ऐसे वसुदेव ने बोला। बाद में नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य होगा कि इधर बैठे बैठे वसुदेव ने कैसे इस तरह की बात घोषणा की। हाँ, तो लगता है कि इनको भविष्यवाणी मालूम है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप हाथ देखते हो क्या, क्या आपको ज्योतिष मालूम है क्या, ऐसे वसुदेव कैसे समझ पाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वसुदेव क्षत्रिय थे, उनको मालूम था कि कंस के कुटी नाटी क्या क्या करेगा कंस, पहले से उसकी अपेक्षा था उनके, इसलिए उन्होंने पहले से उनको बोल दिया कि आप सावधान रहना, बच्चे को ख्याल रखना, ऐसे ऐसे बताते हैं। और इधर बताते हैं हरिम जगाम शरणम, ऐसे बताते हैं। ये हरि शब्द का दो मतलब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, सर्व मंगल हरे इति हरि, आपके जीवन से सब तरह के अमंगलता को, अशुभ चीजों को हटा देने वाले व्यक्ति का नाम है हरि। जैसे सूर्य होता है, मलमूत्र जो लोग विसर्जन करते हैं उसको सुखा देता है, उस स्थान को शुद्ध कर देता है अपने किरणों के द्वारा, अपने ताप के द्वारा। इसी तरह भगवान हरि अगर किसी के घर में हो, नहीं तो भगवान हरि का नाम किसी के मुख में हो, वो लोगों के चित्त में जो मल पड़ा है उसको मिटा देते हैं भगवान हरि। वो एक अनुवाद इस प्रकार है। दूसरा है प्रेम दिया हरे मन, प्रेम देकर भगवान को चित्त चोर बोला गया है, मनोहर चित्त चोर का मतलब चित्त को चोरी करने वाले हरि होते हैं, उनका भी नाम हरि है। इस तरह बताते हैं हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकित, भगवान हरि को मन में स्मरण करते हुए नंद बाबा लौटने की प्रोग्राम बनाया, जल्दी ही जल्दी मैं लौट जाऊं, अभी घर भर दिया, अभी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि घर में कोई पुरुष होना चाहिए, पता नहीं कृष्ण के लिए कुछ कतरा ना आए, ऐसे सोचकर वापस लौट रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नती पुरग्राम व्रजादिषु। इधर एक पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट भी दिखा देंगे। तो इधर कंस के आदेश से पूतना कृष्ण को मारने के लिए जाती है, वो बताया, वो यही श्लोक में बताया कंसेन प्रहिता घोरा, तो कंस से प्रेरित ऐसे बताया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आप
अरे पुत्र की लीला है भूल गई, एक
शिशु होकर उसने उसको दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। तुम्हें याद है जब राक्षसी पूतना यहाँ आई थी?
तुम्हारा लाल बड़ा अद्भुत है यशोदा।
ये बड़ा होकर आप ही की तरह महान बनेगा नंद महाराज।
जैसी प्रभु की इच्छा हो, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। क्रूर कंस ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ है, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का संकट हम पर भी आ सकता है।
आओ।
तुम जो कोई भी हो, अपना
परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस।
मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पुत्र। काल समान है परंतु आठवां ही मेरा काल है। मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उनमें वो भी मारा जाए।
जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता कि पूतना तो
कंस है ना प्रहिता, इसका ही मतलब है। कंस से प्रेरित, कंस से प्रशिक्षित थी कौन? ये पूतना। पूता का मतलब शुभ, पूतना का मतलब जिसमें कुछ शुभता नहीं था, उसका नाम है केचरी। तो उड़ रही है, उड़ने वाली एक चुड़ैल होती है वो, एक स्थान से दूसरे स्थान। और चुड़ैल जो होते हैं वो ब्लैक मैजिक इत्यादि करते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक आसुरी थी। किस तरह का, इसका अलग श्रेणी का आता है, खास करके बच्चों को मारना ऐसे। तो कंस ने अपने मंत्री लोगों को बोला था, देखो एक महीने के अंदर जो भी बच्चों का जन्म हुआ है उनको मारने का योजना बनाया हूं मैंने। अगर सब बच्चों को मार दिया जाए तो कृष्ण भी उसके अंदर ही होंगे, ये उनका योजना था। लेकिन उनको मालूम था कि अगर मारने के लिए हमारे सैनिक लोग जाएंगे, लोग उधर से माइग्रेट होकर भाग जाएंगे ना कहीं और दूर प्रदेश में, इसलिए उन्होंने पुतना के पास गया। पुतना ने बोला कि मैं ऐसे मारूंगी बच्चों को, एक एक करके उठाकर विष पिलाकर मार दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह का योजना बनाया उन्होंने। तो इस तरह केचरी उड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक एक बच्चे को पकड़कर। अभी अलग दूसरे स्थानों में मारने के बाद अभी वृंदावन की ओर उड़ रही है, अभी वृंदावन में आ रही है। अभी कम से न पहिता घोरा नाम लिखा है, घोर रूप वाली थी। अभी देखा आपने पूतना बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली ऐसे बताया है। जैसे जो स्त्री पुरुष के संभोग से आधुनिक दुनिया में देखते हैं, कुछ स्त्रियां अचानक गर्भवती हो जाती हैं, वो डर के मारे अबॉर्शन कर देती है क्योंकि माँ बाप क्या बोलेंगे, इस तरह है। वो भी पूतना के श्रेणी के हैं, क्योंकि जो गलत काम है नहीं करना था वो किया, जब बच्चा आता है उसको मारते हैं। तो इस तरह आजकल कोई किसी कोई एक बच्चे दो बच्चे मार सकते हैं, लेकिन पूतना ऐसे सैकड़ों बच्चे मारने की प्रोग्राम बना देते। और वृंदावन में अभी पहली बार आ रही है वो, वृंदावन में शिशुचार निघ्नती पुरग्राम वजादिशु, इसका मतलब है ऐसे शहर ऐसे गांव ऐसे अलग अलग प्रदेश में उड़ती हुई अभी आ पहुंचा उधर वृंदावन के ऊपर। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्पदां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र हि। ये श्लोक सुखदेव जी बता रहे हैं, क्यों इधर लिखा है श्लोक, ये बताते हैं, पढ़िए इधर अनुवाद पढ़िए इधर तीसरा।
जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रीमद् भागवतम 7.5.23, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता।
देखिए परीक्षित ने जब सुना है इसके बारे में, सुनते ही वो डर गए कि मेरे कृष्ण के लिए कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे कृष्ण को कोई मारना नहीं चाहिए। देखिए परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन में उनको शरीर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, गंगा के तट में पहुंच गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं परीक्षित एक आदर्श उदाहरण है वैधि साधना भक्ति के लिए, क्योंकि वैधि साधना भक्ति में हम डर के मारे भगवान का आश्रय लेते हैं शुरुआत में, नहीं तो गुरु के आदेश के कारण हम शरण लेते हैं। इस तरह वैधि साधना भक्ति में सुनते हैं हम। तो पहले उन्होंने सोचा कि चिंतित थे कि 7 दिन में शरीर छोड़ना है, क्या मैं मनुष्य जीवन का परिपूर्णता प्राप्त कर पाऊंगा क्या, ऐसे प्रश्न था। तो पहुंच गए थे गंगा के तट में, कथा सुना भागवत आप जानते हैं इसे। लेकिन अभी खुद के लिए स्वार्थ भावना नहीं था, डर नहीं था। अभी किसके लिए डर था? कृष्ण के लिए। इसका मतलब है वो वैदिक भक्ति से रागानुग तक चले गए। अभी रागानुग स्तर पर आप पहुंचे। अभी रागानुग स्तर पर भक्त को चिंता होता है कि भगवान के लिए कुछ खतरा न हो, भगवान सुरक्षित रहे। तो ये पूतना की नाम सुनते ही उन्होंने सोचा कि वृंदावन में आ रही है, कृष्ण के लिए कुछ हुआ क्या, ऐसे मन में प्रश्न उठा। तो तुरंत वो बता दिया उन्होंने, ना यत्र श्रवणादि रक्षोग्नानि स्वकर्मसु। बोलते हैं कि अगर कोई राक्षस राक्षसी पिशाच भूत प्रेत कोई आएगा जिस स्थान में जिधर लोग श्रवण करते हैं भगवान हरि की कथाओं का, वो उनको मारने की बात तो दूर की बात है, उनको मार भी नहीं पाएंगे, कृष्ण को भी मार नहीं पाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, ऐसे बताते हैं। और कुर्वन्ति सात्पताम वर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही, इस तरह के विविध अशुभता अमंगलता फैलने वाली लोग जो होते हैं वो मर जाएंगे। तो साधारण भक्त जो सुनता है श्रवण करता है उसको भी कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं से कृष्ण को क्या कर पाएंगे, तुमको कुछ चिंता नहीं, ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब इधर चक्रवर्ती बताते हैं कि अगर कोई अपने स्वधर्म के साथ साथ श्रवण को जोड़ता है वो अच्छा है, लेकिन अगर कोई श्रवण ही उसका धर्म के रूप में अपनाता है, भगवान की कथा का श्रवण ही मेरे लिए उच्च कोटि का धर्म है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर किसी स्थान में भगवान का ही उपस्थिति हो, जैसे मंदिर है, जैसे वृंदावन धाम है, उधर तो असुरों की असुर बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे, ऐसे वो बताते हैं दूसरे श्लोक में। आगे बताते हैं चौथा श्लोक में, सा केचरी एक कदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मा प्राविशत कामचारिणी। देखिए प्राविशत का मतलब घुस गई, कामचारिणी का मतलब कुछ उसके मन में कुछ योजना था, योजना रखती हुई वो वृंदावन में वो प्रवेश किया नंद गोकुलम में, ऐसा बताया है। योषित्वा माये आत्मान, तो उन्होंने क्या किया, अपने कुरूप शरीर को ना दिखाते हुए किसी को, घोर शरीर को किसी को ना दिखाकर अपने रूप का बदलावट कर लिया। जैसे इधर देखते हैं, आवाज किधर है?
तो क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा?
कृष्णा कितना सुंदर है,
बड़ा ही अद्भुत है, उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुदबुद्धि खो बैठी।
इतना नन्ना सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण, कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है।
कृष्णा अद्भुत यही घातक भी होगा, मुझे पूरी तैयारी। मुझे तुम्हारे ही विष के स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांव वासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर
धारण करके तो सुखदेव गोस्वामी के आंखों से हम देखते हैं पूतना जो प्रवेश करती है वृंदावन में, उनका वर्णन दे दिया गया है 5वां श्लोक में। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृत्र मध्यमाम सुवास संकल्पित कर्ण भूषण त्विशोल्लसत कुंतल मंडितानम। बोलते हैं उनके केश जो है मल्लिका के फूलों से सुशोभित था, और जैसे डमरू जैसे उनके कमर था, और इस तरह सुवाससम अच्छे अच्छे कपड़े पहनी थी, कल्पित कर्ण भूषण, उनके कानों में बहुत सुंदर कुंडल चमकने वाली कुंडल पहना था, वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्ते वनितां प्रजौकसां अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। बोलते हैं कि वो चलती समय, चलते समय मुस्कुराती हुई चल रही थी वो, इसके कारण मनहरन्ति, सबके मन को चीन लिया। आप पूछेंगे अरे असुर आ रही है, किसी ने रोका नहीं क्या? सुखदेव जी बोल रहे हैं अरे रोकने की बात तो दूर की बात, तो लोगों ने स्वागत किया उनको, सोचा कि लग रहा है कि लक्ष्मी ही आ गई है अंदर, हाथ में एक कमल लेकर गोल गोल घुमा भी रही है, इतना खूबसूरत दिख रही है। वनिताम व्रजो कसाम का मतलब ब्रजवासी लोगों ने सोचा, क्या सोचा, हम भोज करे न रूपिणी गोप्य श्रियम, गोपिया ने सोचा कि लक्ष्मी ही आ गई है इधर ऐसे, द्रष्टुम इवा का मतलब है लक्ष्मी नहीं है वो, लक्ष्मी जैसे दिख रही थी वो, आगताम पतिम, क्योंकि उनके पति लक्ष्मी के पति नारायण है जो कृष्ण के रूप में जन्मे हैं, शायद उनको देखने के लिए लक्ष्मी खुद आ गई है ऐसे लग रहा है। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि ऐसे एक सुंदर स्त्री अगर हमारे बच्चे के ऊपर कृष्ण के ऊपर दृष्टि डालेगी तो भविष्य में हमारा कान्हा बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, उसका आशीर्वाद हो जाएगा बच्चे के ऊपर। तो किसी ने लेश मात्र भी शंका नहीं किया। देखिए इससे एक चीज हमें पता चलता है, ये तो एक डोंगीपन कर रही है ना, कौन अभी पुतना, आप देख रहे हैं बाहरी देखते समय लग रही कि बहुत खूबसूरत है, बहुत कोमल है, बहुत प्रेम कर रही है सब बच्चों के ऊपर और खास करके कृष्ण के ऊपर ऐसे दिख रही है, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर कुछ गलत योजना बनाकर आए हैं, कृष्ण को मारने की योजना लेकर आई है ऐसे, तो एक तरह का माँ का नाटक कर रही है, इसलिए कृष्ण भी बच्चे का नाटक करेंगे उसके साथ, आप देखेंगे भगवान बोलते तुम नाटक करते हो, तुम्हारे नाटक के साथ मुझे भी आदान प्रदान करना पड़ेगा, मैं भी तो बच्चे का नाटक करूंगा, तुम माँ का करो मैं बच्चे का करूंगा। तो माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है ना, ऐसा तुम दूध पिलाने के लिए आए हो, मैं भी दूध पियूंगा बच्चे जैसे, लेकिन तुम मेरे प्राण निकालने की योजना के साथ आए हो, मैं तुम्हारा प्राण निकाल दूंगा। तो ये कृष्ण का योजना था। इसे एक चीज पता चलता है, इस दुनिया में हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रामाणिक है क्या डोंगीपन है, इसको देखने के लिए अनेक लोग के पास, लोगों के पास क्षमता नहीं है, तो अनेक बार लोग ऊपर ही ऊपर देख कर वो मोहित हो जाते हैं, तो ये बात पता चलता है। इसलिए ये पूतना के वध में ये बताया जा रहा है कि उसका खूबसूरती सिर्फ ऊपर ही ऊपर था ऐसे। तो कंस ने योजना की थी कि अभी पहले हम सब बच्चों को मारेंगे, उनका होने के बाद ऋषियों को मारेंगे, क्यों, क्योंकि ऋषि लोग यज्ञ करते हैं याग करते हैं विष्णु के लिए, तो वो लोग देवताओं को विष्णु को पोषण देकर ये ब्राह्मण संस्कृति वैदिक संस्कृति को वर्धन देते हैं, वर्धन करते हैं, इसलिए उनको भी मिटा देना चाहिए, लेकिन उनका नंबर आएगा बाद में, पहले बच्चों का देखेंगे पहले, क्योंकि उसमें कृष्ण होगा, इस तरह सोचकर उन्होंने ये पुतना को भेजा था ऐसे। अभी सातवां श्लोक में बताते हैं,
बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशोन् यदृच्छयानन्द गृहे असदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पे अग्निम् इवाहितं भसि। बोल रहे हैं इधर दो शब्द इस्तेमाल किया है खास करके, सुखदेव गोस्वामी देखिए खास शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून, वो बच्चों को पकड़कर मारने की योजना के साथ जो पूतना आ रही थी, यदृच्छया नंद गृहे असदंतकम्, अभी तक एक भी बच्चे को स्पर्श नहीं किया वृंदावन में, अभी तक पहला बच्चा कौन है, ये कृष्ण का ही योजना था, क्यों, क्योंकि अगर मुझे मारने के लिए आएगी पहले से मर जाएगी वो, बाद में दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा कोई ब्रजवासी को, ये कृष्ण का योजना था ऐसे। और दूसरी बात है, हमें समझना चाहिए कि ऐसे कोई असुर कहीं भी अपने आप चुपके से प्रवेश नहीं कर सकते जब तक भगवान की अनुमति हो। भगवान की अनुमति के बिना कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे दुर्वासा मुनि घुस जाते हैं उधर वैकुंठ के अंदर, कुछ लोगों ने पूछा मुझे, प्रभु जी दुर्वासा मुनि तो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, उनको अनुमति कैसे मिला वैकुंठ में? लोगों का प्रश्न उठता है कि नहीं है? हमने सुना है कि ज्ञानी योगी कर्मी इन लोगों के लिए अनुमति नहीं है वैकुंठ में, ये कैसे पहुंच गए? तो मुझे भी ये प्रश्न था, मैंने एक वरिष्ठ भक्त को, एक सन्यासी को पूछा, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बोला अगर हमें शिव विग्रह की पूजा आराधना करना हो तो ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत है ना, इसकान में पहले हरिनाम दीक्षा उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलता है, तब तो अंदर जाकर हम आरती उतार सकते हैं भगवान के लिए। लेकिन कभी कभी पेंटिंग के लिए अंदर किसी को छोड़ते हैं हम, है ना, पेंटिंग भी करता है ना कोई, सीडी डालकर अंदर आल्टर के लिए ऊपर नीचे पेंटिंग करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की बात छोड़ो, वो नाम भी नहीं लेता कोई, कभी ऐसे भी लोगों को भी छोड़ते हैं कभी काम करने के लिए, क्योंकि वो काम से भगवान के आल्टर का शोभा बढ़ाने के लिए, उनको काम में लगाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ते हैं उनको, है? इस तरह हम छोड़ जिस तरह उनको छोड़ा जाता है ऐसे ही दुर्वासा मुनि को भी छोड़ा गया वैकुंठ में। क्यों भगवान ने छोड़ा? ये बात सिखाने के लिए कि शुद्ध भक्त के विरुद्ध तुमने काम किया है, इसलिए मैं भी तुमको बचा नहीं सकता, वैकुंठ में भी तुम पहुंच जाओगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पहुंच गया वैकुंठ में टहर गए उधर ही, ऐसा नहीं है। आपको जाकर दंडवत करना पड़ेगा अम्बरीश को और माफी मांगना पड़ेगा, ये भगवान सिखाने के लिए उनको अनुमति दिया। इसी तरह नंद गोकुलम भगवान के हाथ से सुरक्षित है, जैसे भागवत में पढ़ते हैं गोविंद भुजगुप्तायाम, ऐसे एक श्लोक आता है भगवान गोविंद के भुज से द्वारका धाम सुरक्षित है, उधर किसी भी तरह का अमंगलमय चीज अंदर घुस ही नहीं सकते, यही चीज वृंदावन के लिए भी है। लेकिन भगवान ने अनुमति दिया क्यों? क्योंकि उनके लीला का वर्धन करने के लिए, लीला बढ़ाने के लिए, और ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, खुद भी आनंद लूटने के लिए, और आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए, और दुनिया के सब लोगों को ये सिखाने के लिए कि भगवान के आश्रय लेकर आसुरों को मिटाया जा सकता है बहुत आसानी से। भगवान का नाम का आश्रय लो, भगवान के कथा का श्रवण करो, इस तरह करके हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इस तरह अनेक कारणों से भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं, उनकी अनुमति से ही अंदर प्रवेश कर रही है, लेकिन खुद को मालूम नहीं उसको, किसको? पूतना को मालूम नहीं कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, इधर आ रहे हैं, आ रही है वो, इसलिए बोलते हैं असदंतकम, बोल देते हैं पहले पहले इधर ही। उसको मालूम नहीं था कि असत असुर जो होते हैं उनको मारने की क्षमता है छोटे कृष्ण में। देखने में कृष्ण है छोटे नन्हे मुन्ने बालक, लेकिन शक्ति में सीमा ही नहीं है उनकी शक्ति का। जैसे आप देखते हैं जब वामन देव आते हैं अपने शक्ति को प्रकट करने के लिए, तीनों लोगों को मापने के लिए अपने आकार को त्रिविक्रम बना लेते हैं जमीन से आसमान तक। नरसिंहदेव आते हैं, नरसिंहदेव की कथा पढ़ेंगे, ऐसा बताया है उधर, ये बताते हैं ना प्रहलाद एक श्लोक में बताते हैं, नाहम बिबिम्य जितते ति भयानकास्य जिह्वार कनेत्र भृगुटी रभसोग्र दंष्ट्रात् आंत्रस्रजक्षत जकेशर शंकु कर्णा निर्ह्राद भीत दिगिभा अरिभिन्न काग्रात। उनके जो बाल बह रहे थे ऐसे, उसके कारण बादल बिखर रहे थे आसमान में, इतना बड़ा आकार था उनका ऐसे। तो उनके दोनों आंखें चंद्र सूर्य जैसे चमक रहे थे, वैसे तो उनका चंद्र सूर्य उनका ही आंखें हैं, इतना बड़ा रूप अपने रूप में प्रकट किया अपने आप को। तो उनके हाथ में हिरण्यकशिपु की कठपुतली बन गया, इतने छोटा बन गया, ऐसे पकड़ लिया उन्होंने जैसे आप चींटी को पकड़ते हो आप ऐसे। कितना भगवान नरसिंहदेव शक्तिशाली हैं। लेकिन कृष्ण को अगर किसी असुर को मारना हो, हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु किसी को भी मारना हो, कृष्ण नन्हे मुन्ने बालक होकर ही मारते हैं, उनको बड़ा आकार धारण करने की जरूरत नहीं पड़ता उनको, ये बात बताया गया है। ऐसे अपने रूप का रखते हैं, उनको कुछ आयुध कभी जरूरत नहीं, हाथ में चक्र नहीं, चक्र की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, खड़ग की जरूरत नहीं, और गदा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने ओंटों से ही इस पूतना को मारते हैं भगवान। आप देख सकते हैं दो चीज है, एक आयुध इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा है अपने आकार को बदलते नहीं, ऐसे ही क्यों ऐसे करते हैं भगवान, उसका भी कारण है। उनका योजना था कि मेरे निकट प्रिय पार्षद जो हैं, जैसे यशोदा मैया, आनंद बाबा, बाकी गोपबाल, गाई बछड़े, इनके समक्ष मेरे ऐश्वर्य को मैं प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े रूपों को दिखा दूंगा मैं तो ये लोग डर जाएंगे, कौन है ये हा? क्योंकि मैं उनके गोद में नन्हे मुन्ने बालक के रहना चाहता हूं, ताकि उनके प्रेम में बाधा ना आए हा? उनके प्रेम को एक ही बार भगवान अपने आकार को बढ़ा करते हैं, किधर अगासुर के मुख में हम पढ़ेंगे उस लीला में, क्योंकि उस समय सब गोपबाल मर चुके थे, ऐसे लेटे थे, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने बढ़ाया अंदर ही अंदर आकर, लेकिन बाहर किसी को इस तरह का लीला नहीं दिखाया वृंदावन में ऐसे। तो इस तरह ये बता रहे हैं कि असद अंतकम, असद असुरों को वध करने का क्षमता वो छोटे नन्हे मुन्ने बालक कृष्ण में था, लेकिन ये देख नहीं पाए ये पूतना। और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बालम प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम, निजो उरुतेजसम, उरु का मतलब बहुत शक्तिशाली, तेजस, भगवान में ऐसी शक्ति था, लेकिन प्रतिच्छन्न उसको भगवान ने डक कर रखा था उसको, इसलिए तुरंत देख नहीं पाएगी इनके अंदर कितना शक्ति है, जैसे आप देखेंगे अभी।
क्या है, देख कर नहीं चल सका।
ये कृष्ण का सुंदर शिशु किस घर में है?
धन्यवाद, ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है, सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी।
देखो तो कैसा प्यारा है,
मुझे भी देखने दो ना,
बहुत ही खूबसूरत है।
ओ, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर।
क्या आप तीनों लोकों की देवी हैं?
क्या आप कृष्ण को आशीर्वाद देने आई हैं?
कौन है आप और आपका मेरे घर आगमन
कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ, मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा।
तो इस तरह इधर बताया गया आठवें श्लोक में, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनंतमारोपयदंकमंतकं यतोरगं सुप्तम अबुद्धरज्जुदि। इधर बताते हैं विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, हालांकि वो बच्चों को मारने में बड़े निपुण थी वो, लेकिन चराचर आत्मा स निमीली तीक्ष्ण, उन्होंने देखा कि छोटे कृष्ण को जब देखा उन्होंने, उसको देखते ही भगवान ने आंख बंद कर लिया, निमीली तीक्ष्ण ऐसे बताते हैं ऐसे। और तीसरा में बताते हैं अनंतम आरोप यद अंकम अंतकम, बता रहे हैं कि भगवान अनंत है, उनकी शक्तियों की सीमा ही नहीं है, उनके गुणों का भी वर्णन अनंत शेष नहीं कर पा रहे हैं, उतना गुण है उनमें। और आरोपयत अंकम, अपने जांग में अपने गोद में वो छोटे कृष्ण को ले लिया उन्होंने। यथा उरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुदी, बोल रहे हैं कि जैसे एक सर्प होता है, एक रस्सी होता है, रज्जुदी का मतलब है रस्सी, रस्सी सोचकर अगर किसी ने सर्प को ले लिया अपने हाथ में क्या होगा, सर्प डसेगा ना। अभी रात के समय आपको कुछ क्लॉथ लाइन बांधना हो है? आपको यात्रा में जाता है बांधना है, अगर आपने सोचा कि रस्सी पड़ा है ठीक है बांध लो, ऐसे उठाते हैं देखते हैं करता हो है? क्या है वो हाँ। तो इस तरह कृष्ण को सोचा कि साधारण रस्सी जैसा है, लेकिन वो कौन थे, सर्प जैसे शक्तिशाली थे है? उनके अंदर की शक्ति इसको मालूम नहीं था इसको, ऐसे ऐसे बताया जा रहा है इधर। ये एक मूर्ख व्यक्ति जो सर्प को उठाता हाथ में, जैसे एक रस्सी को उठाता ऐसे उन्होंने उठाया, ऐसे बताया गया है। तो इधर बताया गया कि निमीलित क्षण है, भगवान ने आंख क्यों बंद किया उसके अनेक कारण बताया गया जा रहा है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तीन चार बताते हैं आपको। एक है, भगवान ने सोचा कि अभी ये तो अपने स्तन को एक विष लेपन करके आई है मुझे पिलाने के लिए, वो तो मैं नहीं पीऊंगा, विष पीने वाले तो अलग होते हैं, कौन है वो, शंकर जी है। तो आंख बंद करके शंकर को एक ऑर्डर दे दिया, शंकर जी हलाहल को पीने के लिए आपको बुलावा आया था ना, इसी तरह अभी इधर भी और एक हलाहल आया है, तो आप इसको पी लेना। शंकर को आदेश देने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा है, भगवान ने सोचा अभी अवतरित हुआ हूं ब्रज में गोकुल में, लेकिन मारने के लिए पहला राक्षस कौन है, वो स्त्री है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। ऐसे अनेक कारण बताए हैं ऐसे। और उसके मन की बात भगवान समझ गए कि कितना आसुरी प्रवृत्ति लेकर आई है, देखना भी नहीं चाहते थे, अपने आंख बंद कर लिया, ऐसे बताया है। और भगवान ने सोचा कि मैं अगर क्रोध की आंखों से देखूंगा लीला हो ही नहीं पाएगा लीला, उसके पहले से वो जलकर राग बन जाएगी वो, इसलिए आंख बंद कर लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे बताया है। तो भगवान ने यह भी सोचा कि अच्छा ये आई है नई नई, ये कौन थी उसके पूर्व जन्म में, इसके बारे में सोचने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया, ऐसे भी बताया है। तो क्योंकि एक अशुभ मनोभावना के साथ आई थी, मारने की मनोभावना से, इसलिए भगवान ने उसको देखना भी नहीं चाहा। इसे हम लोग समझ सकते हैं, भगवान हमारे इंटेंशन को समझते हैं। इंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट इन भक्ति, ऐसे बोला गया है। भक्ति में बाहरी बाहर हम जो करते हैं वो ऊपर ही ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में हमारी भावना क्या है, क्या इच्छा लेकर हम भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम पुणे स्टेशन में आते हैं, कभी आते समय ये ऑटो वाले लोग आकर सब बोलेंगे स्वामी जी दे दीजिए आपको सूटकेस, ऐसे लगता है कि सेवा भाव है। कुछ लोग जो बोले बाले होते हैं वो दोनों दे देंगे, अच्छा आप ले उठाएंगे क्या, हम भी उठाएंगे, कुली की जरूरत नहीं क्या, नहीं उठा कर लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा, अपने गाड़ी में लेके जाएगा, अंदर डाल देगा। आप बोलेंगे उधर जाना है, मीटर है क्या, मीटर ही नहीं रहेगा गाड़ी में, आप पूछेंगे कितना बोला, 500 रुपया बोलेगा, देखा ना आपने। तो लग रहा है कि वो प्रेम प्रकट कर रहा है, क्या प्रेम है क्या, वो काम है, क्योंकि वो लूटने की मन से वो ड्रामा नाटक कर रहा है वो। इसी तरह ये भी प्रेम का प्रदर्शन कर रही है ऊपर ही ऊपर, लेकिन ये नाटक है, अंदर इसका भावना एक घोर भावना है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। ठीक है तुम्हारा नाटक में समझता हूँ, क्या बड़ा नाटक कर रही हो, आंख बंद कर लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे भी बताया, ऐसे बता गया है। ऐसे इधर इसलिए बताते हैं कि यथा उरगम, उरग का मतलब है नाग, ऐसे बताते हैं। 9वां श्लोक है, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अति वाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतरा कोश परिचदासिवत वरस्त्रियं तत् प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी अतिष्ठताम। आज बताते हैं, पढ़िए अनुवाद। 9वां,
पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी, वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी।
करेक्ट। म्यान आप देख सकते हैं, म्यान में अच्छा डिजाइन होता है, देखा आपने, वो एकदम मुलायम भी होता है, डिजाइन भी होता है, मुलायम भी होता है। इस तरह पूतना का भी डिजाइन भी था, अच्छा सुंदर रूपवती थी, मीठे मीठे बोल भी रही थी, देखने में लक्ष्मी जैसे दिख रही थी, वो म्यान जैसे थी, लेकिन हृदय कैसा था, तलवार जैसा था। तो इस दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि जो लोग मूर्ख लोग हैं, ये भगवान के बहिरंग शक्ति की प्रदर्शन एक सुंदर स्त्री के रूप में आता है इस दुनिया में, उसको देखकर मनमोहित हो जाते हैं इंसान। जैसे सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस जो बहुत सुंदर तरीके से एक्टिंग करते हैं, उसको देखकर इंसान सोचता है कि बहुत गुणवती होगी, देखने में गुणवती दिखेंगे, लेकिन अंदर उनका क्या चल रहा है वो दूसरी बात है कि नहीं है। इस तरह दुनिया में लोग बाहरी दृश्य को देखकर मनमोहित होते हैं, इस तरह ये भी मनमोहक रूप धारण करके ये आई थी ऐसे, इसलिए म्यान के अंदर क्या है, तलवार है, तलवार बहुत तीक्ष्ण है। यही बोला हमारे कश्यप मुनि ने दिति के बारे में, क्योंकि दिति ने बहुत, दिति को क्या था, ईर्ष्या था उसके मन में कि मेरे जो साउथ बोलते हैं ना, साउथ मेरे साउथ हैं, उनके लिए पुत्र दिया है मेरे पति ने, को वाइफ्स, हाँ सौतेली, उनके लिए पुत्र दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया है, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उनको सेवा की, मीठे मीठे बात किया, दंडवत प्रणाम किया। अच्छा, तो उसके बाद जब पति बहुत मोहित हो गया, उसने पूछा, हे पत्नी तुम इतना अच्छा सेवा दिया है, अभी मांग लो, जो चाहिए मैं दे दूंगा तुमको। ऐसी जो पत्नी अपने पति को भगवान जैसे आदर देती है, उसको क्या नहीं मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, मैं कुछ भी दे दूंगा तुमको, बोल दिया, मांगो। वो बोले अभी लाइन में आओ, अभी है। अभी उसने बोला, देखो हमें, मुझे एक बेटे दीजिए जो इंद्र को मार सकता है, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों मेरे बच्चे थे, है ना। तो उनको किसने मारा, वराहदेव और नरसिंहदेव, लेकिन क्यों वो लोग आकर मारे, इंद्र की प्रार्थना के कारण। इसलिए भगवान से क्रोध नहीं कर पाई दिति, किससे क्रोध किया, इंद्र से। इसलिए इंद्र को मारने की प्रोग्राम बनाया उन्होंने। तब ये बोलते हैं, शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम हृदय क्षुरदाराभम, बोलते हैं कि ये मेरी स्त्री जो है, इसका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा था, मीठे मीठे बात कर रही थी, दंडवत प्रणाम किया, बहुत नम्र थी, अभी मैं हाँ बोलने के बाद ऐसे चीज मांग रही है, उसके हृदय एक बहुत असीना बोलते हैं ना, तलवार, तलवार जैसे तीक्ष्ण है, ऐसे बोल रहा है कौन, कश्यप, कश्यप मुनि बोल रहे हैं। तो देखने में कमल जैसा है चेहरा, लेकिन अंदर हृदय कैसा है, एक तलवार जैसा है, काट रही है, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए एक चीज हम सीखते हैं कि हमें मनमोहित नहीं हो जाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर देख कर, अंदर की बात जानने की क्षमता भगवान में है, और भक्तों में भी है, शुद्ध भक्तों में है, ऐसे वो मोहित नहीं होंगे। ऐसे जैसे हरिदास ठाकुर बैठ कर जप कर रहे थे, वो वेश आकर उनको आकर्षण नहीं कर पाए, क्योंकि वो देख सकते थे कि ये भी एक जीव है, एक शरीर में बैठा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनुभव कर रहा है ना, वो सब देख पा रहे थे। ऐसे इस तरह भगवान ने भी देख लिया, उनको समझ लिया कि म्यान के अंदर क्या है, तलवार जैसा, समझ लिया। दसवां श्लोक है, तस्मिन् स्तनम् दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरां कमादाय शिशोर्दधावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यतत् प्राणैः समं रोष समन्वितो विभत्। अभी और थोड़ा देख लीजिए,
अद्भुत शक्ति लगती है,
मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी हैं जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा।
तो इधर क्या बताया है, इधर देखिए, इधर बताया है तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मुलबणम, बहुत हाई इंटेंसिटी है, ऐसे बहुत शक्तिशाली विष को अपने स्तन में लेपन करके आई थी, उसको पिलाकर कृष्ण को मारने के लिए है। और बता रहे हैं कि गोरांग कमादाय, घोर अंकम का मतलब है उनका गोद, घोर अंकम आदाय शिशो ददो, उनके मुख में अपने स्तन को दिया पीने के लिए, दूध पीने के लिए है। कहते हैं घाड़म कराब्याम भगवान प्रपीड देता, जैसे एक माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, अपने स्तनपान कराती है, बच्चे भी माँ को आलिंगन करते हुए दूध पीता है, देखा ना आपने, छोटा बच्चा ऐसे होता है। तो भगवान भी ऐसे ही नाटक किया, एक बच्चे जैसे है, बच्चे जैसे माँ को आलिंगन कर लेता है और दूध पीता है, छोटा मन्ना मन्ना बच्चा, ऐसे भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम अपने कर से भगवान प्रपीड्य तत् ऐसे बताते हैं। उस समय जब भगवान ऐसे उसको पकड़ते हुए प्राणे समम रोष समन्वितो अभिबद्ध, उसके प्राण के उसके दूध के साथ साथ भगवान ने प्राण को भी पी लिया। इधर बताया गया, अभी देखेंगे।
घर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी।
नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।
सा मुञ्च मुञ्चमलमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। देखिए, सा मुञ्च मुञ्च अलमिति प्रभाषिणी, बोला कि छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे, ऐसे चले आ। मुञ्च मुञ्च का मतलब है छोड़ो छोड़ो ऐसे। लेकिन हमारे आचार्य ने बताया कि अगर भगवान किसी को पकड़ते हैं जब तक शुद्धिकरण नहीं करते हैं छोड़ते नहीं, ऐसा बताया। शुद्ध करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उनका आश्रय लिया है ना। कोई पहुंच गए भगवान के पास तो भगवान सोचेंगे कि जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, अगर बच्चे गया है उनको बच्चे को इंजेक्शन देना हो तो कुछ मिठाई खिला देते हैं उसको। मिठाई खाते खाते बच्चा का ध्यान किसके ऊपर है? मिठाई के ऊपर है, तब इंजेक्शन भी दे देते हैं डॉक्टर। इंजेक्शन देकर उसको टिक कर देते हैं उसको, है कि नहीं। इस तरह भगवान भी एक नन्हे मुन्ने बालक के समान बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अभी शुद्धिकरण का प्रोग्राम बनाया भगवान ने। है तो समझ लिए भगवान ने इसके प्राण, क्योंकि प्राण लेने की एक गलत इच्छा के साथ आई है। कृष्ण का ही नहीं, सब बच्चों का से ये कंस का राक्षसी है। इसलिए भगवान ने वो चिल्ला रही है, सा मुंच मुंच अलमति प्रभाषिणी, चिल्लाती हुई निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। लेकिन भगवान छोड़ा नहीं, जितना भगवान ने दबाया उनके शरीर को उतना उनको दर्द, इतना दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ उनको। विवृत्य नेत्रे चरणौ, ऐसा बताया कि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों से उनके शरीर को ना छोड़कर आलिंग करते हुए भगवान दबा रहता है, इसे बताया गया है। प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोध है, जोर से वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, ऐसे बोलती हुई भाग गई। 12वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए, 12वां श्लोक का।
पूतना की गहन तथा जोरदार चिंकारों से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो।
हाँ, देखिए इस तरह का संहार जो करना होता है भगवान खुद नहीं करते। आप लोग जानते हैं इस दुनिया में अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाना हो क्या कृष्ण करते हैं? क्या कौन करते हैं? ये विष्णु, महाविष्णु अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं। भगवान महाविष्णु सृष्टि करते हैं और संहार करने के लिए शिव जी हैं, है ना। भगवान खुद कृष्ण नहीं करते। इसी तरह भगवान के पास सर्वज्ञता शक्ति है, संहार शक्ति है। सर्वज्ञता शक्ति का मतलब है सब चीजों को सही ढंग से जानते हैं। जैसे इधर आने वाली खूबसूरत स्त्री पूतना राक्षसी है करके भगवान को पहले से मालूम था, है कि नहीं। इसको सर्वज्ञता शक्ति बोलते हैं। जैसे एक दिन आगे पढ़ेंगे हम लोग, अनेक बछड़ों को गायों को लेकर भगवान जंगल में गोचरण लीला के लिए जा रहे थे अपने मित्रों के साथ। लेकिन उधर एक घुस गया है, एक वत्स, वत्स कौन था? बड़ा असुर था, वत्सासुर करके, वो घुस गया था, कृष्ण को मारने की योजना था उसका। लेकिन भगवान ने सही ढंग से समझ लिया उनको, उन्होंने बोल दिया बलराम को, बलराम ये जो वत्स दिख रहा है वत्स नहीं है, कौन है? ये असुर है। तो भगवान भी वो वत्स के साथ अच्छा व्यवहार किया पहले, ऐसे ऐसे उनको निकट जाने के बाद पूंछ पकड़कर गोल 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 घुमाकर फेंका उन्होंने, तब सबको पता चला कि कौन है, बच्चा सुराय से। तो इसका मतलब है भगवान के पास सर्वज्ञता शक्ति है। सर्वज्ञता शक्ति मतलब है वो ऐसा कुछ चीज नहीं हो सकता इस दुनिया में जिसको भगवान नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं भगवान, यही बात है। तो इस तरह पूतना के बारे में भी उनको पूरा मालूम है उनको, लेकिन अगर संहार करना हो तो वो खुद नहीं करते हैं, संहार शक्ति को बोल देते हैं तुम इसको संहार करो, वो कर देती है, वो संहार शक्ति कर देते हैं। जैसे अगर आपको कुछ पेड़ को काटना हो तो कुल्हाड़ी लेकर काटते हैं ना, आपको खुद हाथ से काटना नहीं पड़ता है, तो कुल्हाड़ी काटता है उसको। इस तरह भगवान की संहार शक्ति भी कुल्हाड़ी जैसा है भगवान के हाथ में, और ये शक्तियों को बुलाना भी नहीं पड़ता भगवान को, इनके शक्तियां इनके निकट ही रहते हैं। जैसे कभी कभी एक धनी खानदान में जन्मा व्यक्ति अपने बड़े महल से बाहर आता है तो 10-12 ड्राइवर लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं। एक टॉपलेस गाड़ी है जो शाम को बीच में लेके जाता है, दूसरा फॉर्मल गाड़ी है जो कंपनी के लिए लेके जाता है, दूसरा है छोटा गाड़ी है ट्रैफिक में जल्दी जाने के लिए, ऐसे अलग अलग गाड़ी है उसके पास, है ना। तो सब ड्राइवर बोलते हैं जी हमारे गाड़ी में आइए, हमारे गाड़ी में, वो होता है ठीक है हमारे परिवार सहित जाना है, सबसे बड़ा गाड़ी लेके आओ, तो सबसे बड़ा लेके आते हैं वो जाता है। तो जिस तरह के वो ड्राइवर लोग सलाम मारकर उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही सब शक्तियां भगवान को भी सेवा देते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको ये बात है। तो इस तरह सब शक्तियां रेडी हैं उनको सेवा करने के लिए, संहार शक्ति इस तरह सेवा देती है वो उनको, इस तरह आपके संहार शक्ति के द्वारा भगवान ने उसको मार दिया। तो इस तरह अभी अनुवाद 3-4 अनुवाद पढ़िए ऐसे।
इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो।
अभी हमने देखा ना जैसे गिर पड़ी वो, और ऐसा बताया कि घर के बाहर भागने लगी, ये भी भगवान का आयोजन था। ऐसे बाकी जनता को कुछ समस्या नहीं होना चाहिए, सब ब्रजवासी उनके ही भक्त हैं, इसलिए भागती हुई गई, पीछे 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 भागती हुई गई, जाकर कमसा का बहुत बड़ा बगीचा था उधर गिर पड़ी। लेकिन उधर कोई जनता नहीं थी, सिर्फ पेड़ थे, और किसका पेड़ था? कमसा का। पूरा ध्वंस कर दिया, पूरा पेड़ों को नष्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए योजना बनाया, अभी कंस का ही बगीचा मर गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, मिट गया इसे। इससे क्या हम सीखते हैं? पहला तो पूतना से हम सीख सकते हैं कि जो दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा के साथ जाते हैं, खास करके अगर भक्तों को इस तरह कोई करता तो खुद को ही नुकसान प्राप्त होता है उनको, करेक्ट है ना। जैसे हम तृणावर्त के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसे आएगा नंदा बाबा बोलते हैं ऐसे, तो भगवान को नुकसान करने के लिए देने के लिए ये अपने रूप बदल कर आई थी, खुद को ही खुद के शरीर को ही त्यागना पड़ा उसको, और उस तरह कंस को भी नुकसान हुआ जब वो गिर पड़ी नीचे। इस तरह आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे वर्णन दिया गया है कि पूतना के जो शरीर जो था इतना कुरूप शरीर प्रकट हो गया, 12 मील लंबी था। इससे क्या पता चलता है? एक व्यक्ति जो जिसके मन में कुछ उसका कुबुद्धि है, गलत विचारे हैं, वो बहुत समय के लिए वो छुपा नहीं पाएगा, वो एक्सपोज हो जाता है। क्या बोलते हैं एक्सपोज हो जाता है? पर्दाफाश हो जाता है उसका। पर्दाफाश हो जाता है उसका, बहुत समय वो छुपा नहीं पाएगा। कोई डोंगीपन कर रहा है तो कितना समय के लिए करेगा वो डोंगीपन, नाटक कितना समय के लिए करेगा, पकड़ा जाता है ना, इसे पकड़ा जाएगा वो। इस तरह ये भी पूतना भी बहुत समय उसके रूप जो हो बदल कर, उसका भी ऐसे ही हुआ, आपको मालूम है ना शूर्पणखा का भी, शूर्पणखा का रूप बदल कर बहुत खूबसूरत शरीर के साथ गई इनके सामने, राम लक्ष्मण के सामने, लेकिन बाद में जब नाक कटवाया तभी पता चला उसका रूप क्या कुरूप दिखाया उन्होंने, है ना। इसी तरह इनका भी कुरूप प्रकट हो गया। इससे हम भक्तों के लिए सीखने लायक एक चीज है कि हम कभी भी मन में गलत इच्छाओं को रखते हुए नाटक नहीं करना चाहिए, वो भी सीखते हैं हम, क्योंकि बहुत समय नाटक नहीं चलेगा, पर्दाफाश हो जाएगा, जैसे इन्होंने बोला सही बात है, वो भी पता चलता है इस लीला से। तो इस तरह 12 मील लंबी उसके पेट एकदम सूख गया, एक झील, अगर झील में पानी एक भी बूंद नहीं सूख गया तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा था वो। उनके दो पांव जैसे पुल जैसे दिख रहे थे, ब्रिज जैसे दिख रहे थे ऐसे, और उसके दोस्त तन चट्टान जैसे दिख रहे थे, बड़े बड़े चट्टान है, और ऐसे गिर पड़ी थी। सब ब्रजवास आकर डर गए उसको, उसके इतना विशाल शरीर को देखकर। तो पहले तो सब लोग वो गिरते समय भागते हुए गए अपने अपने घर में घुसने के लिए, लेकिन देखा कि कृष्ण अभी उनके साथ ही उनके स्थान में, अभी तक बच्चे ने छोड़ा ही नहीं उनको, अभी भी उधर ही स्थान में। तो कृष्ण को ऊपर देखकर सब लोग अपने निडर होकर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए उसके शरीर के ऊपर। चला भी ऊपर, आप बोलेंगे अगर शरीर के ऊपर चढ़ते हैं अचानक राक्षसी उठ गई तो चिल्लाती हुई क्या होगा, है ना। लेकिन उनको डर नहीं था, क्यों, कृष्ण को बचाना हो तो जान भी देने के लिए ब्रजवासी तैयार रहते थे। हमारे जान भी चले जाए लेकिन किसको बचाना है, क्योंकि उनका प्रेम इतना बड़ा था कृष्ण के लिए, प्रेम से डर कम हो गया। अभी डर नहीं था, कृष्ण को हम बचाएंगे, मरना तो मरेंगे, नो प्रॉब्लम। इस तरह विचार करते हुए ऊपर चले गए और कृष्ण को ले लिया तुरंत।
इतनी बड़ी राक्षसी, कृष्ण कहाँ है, वो रहा।
तो इस तरह बाद में उसके शरीर को काटेंगे सब ब्रजवासी लोग, काट कर उसको जलाएंगे उसको। तो जलाते समय देखिए कृष्ण के स्पर्श से दो चीज हुआ, उनका शरीर भी सुगंधी शरीर हो गया, साथ साथ उनके अंदर जो गलत भावना के साथ जो आई थी मारने के लिए वो भी चित्त भी शुद्ध हो गया। अगर शुद्ध नहीं होता तो भगवान ने इनको एक माता का स्थान कैसे दिया, वो बात आने वाला है आगे के श्लोक में, अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह अनेक श्लोकों में बोलते हैं, इधर 18वां श्लोक पढ़िए अनुवाद, 18वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए।
बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहा था, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे उठा लिया।
बहुत जल्द से ऊपर चढ़कर कृष्ण को निकाला उन्होंने, क्योंकि कृष्ण को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ उनको कुछ नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, कृष्ण को ये मारना नहीं चाहिए राक्षसी, क्योंकि वृंदावन में सब ब्रजवासियां योग माया में रहते हैं। योग माया मतलब क्या है, जैसे अगर राक्षसी अपने रूप बदल कर आ रही है, क्यों मनमोहित हुए सब लोग, सोचा कि लक्ष्मी जैसा है, क्योंकि भगवान का ही आयोजन है इसे, भगवान के ऊपर इतना घनिष्ठ प्रेम है तो भगवान को जो इच्छा है वो, इसलिए सब ब्रजवासियों की आंखों में उन्हें योग माया को डाल दिया, इसलिए वो देख नहीं पाई वो, नहीं तो पहले से पहचानती थी तो क्या छोड़ती था, कृष्ण को छोड़ देती उनके पास, छोड़ते नहीं थी ना। इस तरह अभी भी देख रहे हैं कि कृष्ण हमारा नन्ना मुन्ना बालक है, उसको बचाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, वही उनका उनका सोच है इसे। उसके बाद आप पढ़ेंगे अनेक श्लोकों में, इधर अभी 20वां श्लोक में बताया गया है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षाम चक्रश्च सकृता द्वादशांगेश नामभिः, द्वादश अंगों में अलग अलग नाम लेकर गाय के पूंछ को लेकर विविध तरह के रीति रिवाजों को करके कृष्ण को, कृष्ण के ऊपर जो दृष्टि आया होगा ये राक्षसी से, उस दृष्टि को निकालने के लिए आचमन करके ये गोपियों ने अलग अलग न्यास मंत्र का उच्चारण किया, जो विष्णु का अलग अलग नाम होता है। जैसे इधर 22वां 23वां श्लोक में बताते हैं, अनुवाद पढ़िए 22वां 23वां श्लोक का अनुवाद।
सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज तुम्हारे पांवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की, तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें, केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की।
हाँ, इस तरह वो अलग अलग अवयवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोपियां कर रही है, क्योंकि वो कृष्ण को देखते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर बच्चा है, ऐसे देखकर वो सब कर रहे हैं। कृष्ण को सुरक्षा की क्या जरूरत है, वो तो सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले परम सत्य हैं, भगवान हैं, लेकिन वृंदावन में अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए एक बच्चे के रूप में आते हैं। तो 25वां 26वां भी ऐसे कंटिन्यू होता है वो। तो 27वां श्लोक में बताया गया है कि विविध तरह के डाकिनी, राक्षस, यक्ष, पिशाच, भूत, प्रेत इत्यादि जो है, जो विविध तरह के दुस्वप्न लाते हैं हमको, वो सब मिट जाते हैं। जैसे कभी कभी स्टार को भी बुरे स्टार बोलते हैं ना, ऐसे वो सब मिट जाते हैं जिधर भगवान के नाम लिया जाता है। एक श्लोक है भागवत में सुंदर, सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतराः। ये परीक्षित महाराज बोलते हैं, जब सुखदेव जी प्रवेश करते हैं ना, उस समय बोलते हैं कि जिस तरह विष्णु जिधर आते हैं उधर असुर कोई नहीं रह नहीं सकता। इस तरह जिधर लाइट ऑन हो जाता है उधर अंधेरा नहीं रह सकता। जैसे सूर्य का उदय होता है सुबह, सब रात का अंधेरा मिट जाता है। सूर्य और अंधेरा साथ साथ नहीं रह सकते। इस तरह जिधर आपका नामों का उच्चारण होगा भगवान का, उधर सब तरह की अशुभ चीजें जैसे भूत, प्रेत, पिशाच सब नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जमीन ढूंढ रहे थे, बहुत महंगा था, लेकिन कुछ कुछ स्थानों में बरी प्लेस बोलते हैं उसको। बरी प्लेस का मतलब जिधर श्मशान था पहले, अनेक कॉफिन्स जो कृष्ण लोग बरी करते हैं ना, उधर ऐसे स्थान को बेच रहे थे कुछ लोग, क्योंकि बुरा भर गया था ना उधर, इसलिए। तो उन स्थानों को खरीदने के लिए बहुत सस्ता था, कोई खरीदेगा क्या उधर? लेकिन प्रभुपाद ने बोला खरीद लो, बहुत सस्ता है। तो कुछ भक्तों ने बोला प्रभुपाद उसको बोल रहे कि उधर भूत प्रेत पिशाच रहेगा। प्रभुपाद बोले कुछ चिंता नहीं, खरीद लो, जमीन बना लो, एक मकान बांध दो, जोरदार कीर्तन करो, 10-12 घंटे का कीर्तन करो, सब भूत प्रेत भाग जाएंगे उधर से। तो ऐसे स्मशान जैसे बहुत नीच स्थान को भी उन्होंने पवित्र बना दिया ऐसे, क्योंकि इस तरह सब तरह के भूत प्रेत सब भाग जाएंगे भगवान के नाम महामंत्र सुनकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर ये मंत्र जानते हैं तो आपको 10-12 नाम जो बोला गया मालूम भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये कलयुग का तारक मंत्र है, महामंत्र कीजिए। तो इस तरह 31वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए, 31वां 31st।
तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए।
और भी 2-3 पटिया अनुवाद पढ़ लीजिए।
नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनक दुंदुबी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था।
और एक पढ़िए।
व्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला।
हाँ, तो इस तरह नंद बाबा वापस लौट आते समय उन्होंने देखा सुगंध निकल रहा था, हा? जैसे लगता था कि पूरे अगरबत्ती के पैकेट को लगा दिया बहुत, ऐसे सुगंध आ रहा था उसके शरीर से। तो कृष्ण के शरीर दिव्य है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उसके संपर्क में आकर कोई भी करेक्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी ये नंबर क्या है, ये 34 है ना। हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 35-36 अंत में जो बताते हैं सुखदेव जी। पूतना लोक बालग्नि, बोलिए, राक्षसी रुधिराशना जिगांसयापि हरये स्तनं दत्पाप सद्गतिम। देखिए बोलते हैं पूतना जो लोक बालग्नि, इस दुनिया में बच्चों को मारने वाली राक्षसी होती थी, रुधिराशना का मतलब है उसका भोजन ही क्या था, खून पीना। इतना गंदा जीवन था उनकी, जिघम से आग का मतलब है एक क्रूर नृशंस बोलते हैं ना, ऐसे उस भावना को लेकर भगवान हरि को स्तन दिया उन्होंने दूध पीने के लिए, दत्वा स्तनम दत्वापि सद्गतिम, उसको सद्गति प्राप्त हुआ। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्चन प्रियतमं किम्नु रक्तास्तन मातरो यथा। ये बोल रहे हैं किम पुनः श्रद्धया भक्तिया, अरे उनके बारे में क्या कहा जाए जिनके पास कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भक्ति और स्नेह हो, किसी के पास हो। अगर इस तरह के क्रूर भावना से आने वाली एक राक्षसी को उन्होंने इतना बड़ा सद्गति दिया, अपने माँ यशोदा के नर्स बना दिया, उनके असिस्टेंट नर्स बना दिया इनको, तो वह बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपना स्तनपान कराया था या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी जैसे कि माताएं करते हैं, भगवान ने सोचा कि ये दूध पिलाने के लिए आई थी ना, वो इच्छा को लेकर आई थी, इसलिए मैं इसको ऐसे एक धात्री का स्थान दे दूंगा। ऐसे भगवान, इसका मतलब भगवान ने उनके अंदर दोष नहीं देखा, दोष को नकार कर सद्गुण को देखा कि ये माँ का ना, इसका मतलब माँ का नाटक करने से माँ का स्थान मिला उनको। अगर नाटक किए बिना सही ढंग से कोई भक्ति करता तो कितना स्थान दे सकते हैं भगवान। इसलिए बाद में ब्रह्मा जी बताएंगे कृष्ण को, हे भगवान पूतना को इतना ऊंचा स्थान दे दिया आपने, आपके खजाना में अभी क्या बचा है, अभी गोपियों के लिए क्या देने वाले हो आप। तो भगवान बोलते मैं क्या देखता हूँ, मैं खुद को ही दे दूंगा बोलते हैं ब्रजवासियों को, बाकी लोगों को सब कुछ दे दिया, तब मैं कौन हूँ, मैं सब ब्रजवासियों के लिए मैं उनका ही दास बन जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। पद्म्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैहि अंगम समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम्। देखिए पद्म्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, भक्तों के हृदय में भगवान अपने श्री चरण कमल के बराबर जो है उसको उस तरह के श्री चरण के साथ इधर बताया गया कि भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं, लोक वंदित ही बताते हैं। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति कृष्ण ने अत्यंत प्रेम पूर्वक पूतना के शरीर का आलिंगन किया था और उसका स्तनपान किया था, अपने पाँव को उनके शरीर के ऊपर डाला है, अपने हाथ से आलिंगन किया और बच्चे के रूप में दूध पिया, ऐसे बता रहे हैं। तो इस तरह ये सुखदेव गोस्वामी के लिए ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहो बकीयम इस तरह का श्लोक सुनकर ही वो भक्त बने, कौन सुखदेव जी, इसलिए इस लीला को बहुत विस्तृत तरीके से अच्छा वर्णन किया उन्होंने, उनके लिए बहुत प्रिय लीला है उनको। तो अभी लास्ट पार्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि पूतना से हम सीखने लायक क्या है। इधर बताया गया कि जो इस दुनिया में जब हमारे अंदर अगर भक्ति चालू होता है, थोड़ा बहुत अंकुरित होता है, उस भक्ति को दबाने वाले अनेक लोग होते हैं, अनेक नाता रिश्ता आप देखेंगे, इस तरह अनेक डोंगी गुरु गुरु भी होते हैं, जैसे जो भौतिकवादी होते हैं। अमेरिका में प्रभुपाद जब गए उस समय कुछ लोग लंबे क्यू में खड़े थे, प्रभुपाद पूछ रहे थे क्या लाइन है, बोले कि ये गुरु जी हैं वो मंत्र दे रहे हैं, एक मंत्र के लिए $500। प्रभु ने पूछा अच्छा क्या मंत्र है, वो बोले कि भगवान बनने के लिए मंत्र है। तो प्रभु बोले अगर भगवान बनने के लिए मंत्र ही दे सकता है तो खुद भगवान क्यों नहीं बनता वो, तो ये मंत्र बेचकर पैसा कमा रहा है वो। प्रभु बोले हम मंत्र देते हैं मुफ्त में, हरे कृष्ण मंत्र कोई भी कर सकता है, कुछ पैसा नहीं उसके लिए। तो प्रभु बोले इस तरह अपने भौतिक प्रलोभनों प्रलोभन से आकर्षित डोंगी गुरु होते हैं, उनको भी पूतना से तुलना क्या है। लेकिन इससे भी बढ़कर बक्सा सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि जो लोग मायावादी हैं अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि परम सत्य निराकार है, तुम ही भगवान हो, हमें भगवान हो, सब जीव भगवान हैं, ये बहुत बड़े डोंगी हैं, क्योंकि धोखा दे रहे हैं जीव को। परम कल्याणकारी भक्तिमय सेवा जो है, उस सेवा करने की मौका को ही छीन रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये जीव को बलकड़ बनाते हैं, खुद ही भी बलकड़ हैं तो जीव को भी बलकड़ बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है जीव के लिए, तो उनको भी डोंगी गुरु बोलते हैं। तो बक्सेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि एक नन्ना, एक कृष्ण जो नन्हे मुन्ने बालक है ना, इस तरह हमारी भक्ति की शुरुआत में भी हमारा भक्ति बहुत कोमल होता है। कृष्ण छोटे बच्चे थे ना, ऐसे ही हमारा भक्ति भी एक कोमल छोटा बच्चे के बराबर है। उस समय कम से भेज देता है ये एक क्रूर राक्षसी, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा आकार वाली, उसके द्वारा वो मारना चाहता है इस बच्चे को। इस तरह अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर पोषण मिल जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगा, तो वो युद्ध भी कर सकता है। लेकिन बड़े होने के पहले से मारने की इच्छा करना, ये पूतना की लीला से हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे इस दुनिया में भक्ति में अगर शुरुआत कोई कर रहा है तो उसके मित्र, उसके फ्रेंड्स, उसके अनेक लोग उसके भक्ति को रोकने के लिए, रोक टोक डालने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं कि नहीं। वो बक्सेंद्र ठाकुर वो बता रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज बक्सेंद्र ठाकुर बताते हैं, इस भारत में जन्मे लोगों के लिए दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्या है? एक है भौतिकतावाद, क्योंकि भौतिकतावाद के कारण भौतिक पदार्थों के पीछे सब लोग भागते हैं। आजकल भी आप देखेंगे अनेक लोग बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है, लंदन में है, बहुत कमाता है, खूब कमाता है, आता है, वो सोचते हैं कि यही जीवन का सक्सेस है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये पैसा कितने समय टिकेगा और 20-30 साल के बाद ये लोगों का क्या गति होगा, उसके बाद किधर जा रहे हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कुछ मालूमात नहीं है, भौतिक जीवन से प्रेरित इस तरह सोचते हैं। तो वैसे ऐसे लोग जो हैं अभी भारत के अनेक लोगों को आप देखेंगे भौतिकता के पीछे भाग रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं अपने माता पिता भाई बहन इनको सेटल करने में, घर देखने में, और उस जिम्मेदारी को पूर्ति करने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं बस। और पैसे के पीछे भागने के कारण आत्मा परमात्मा के बारे में चिंता नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। और बहुत पुण्य, अगर आप किताब देखेंगे बोलेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते जाओ, खुद एक किताब लेकर पढ़ेंगे नहीं है? तो ये एक बड़ा समस्या है। अभी अगर कोई व्यक्ति है भौतिकता से ऊपर उठकर थोड़ा धार्मिक भी हो, उसको भगवान संबंधित चीजों को ढूंढना हो, तो मायावादी आ जाते हैं। मायावादी आकर उसके अंदर जो थोड़ा बहुत लेश मात्र में भक्ति करने की भावना है उसको मिटा देते हैं। बोलते हैं तुम ही भगवान हो, हम सब भगवान हैं, वो लोग उसको बुलकड़ बना देते हैं। तो ऐसे बक्सेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि उस जमाने में भी हरिदास ठाकुर के समय अनेक ब्राह्मण लोग थे जो पुरोहित बोलते हैं ना, घर में जाकर पूजा पाठ करना, सब समाज को अपने कंट्रोल में रखते थे, पूरे ये मंत्र इत्यादि करके पैसा लेते थे लोगों से। लेकिन हरिदास ठाकुर ने लोगों को बोला कि तुमको कुछ बड़े वैदिक मंत्रों को बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण करो, भगवान की प्रेम जगाओ, बस भगवत नाम प्राप्त हो जाएगा तुमको। तो अनेक लोग हरिदास ठाकुर के अनुयायी बने। तो ये लोग जो धर्म को अपने हाथ में रखते थे हा? तो वो लोग नाराज हुए हा? वो हिंदू लोग नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग, हमारे ऊपर सब लोग विश्वास करते थे, अभी हरिनाम करके वो लोग हमारे हाथ से बिछुड़ रहे हैं। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के विरुद्ध झगड़ा किया। समझ में आ रहा है ना आपको ये बात? तो इसलिए आप देखेंगे एक और तो मुसलमान लोग उनके विरुद्ध थे, क्योंकि वो मुसलमान परिवार में जन्मे थे। कौन? हरिदास ठाकुर। वो भी नकारते थे उनको। और इधर हिंदू लोग सोचते थे कि अब हिंदुओं में दो तरीके के लोग होते हैं, एक पूजा पाठ करना और भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना, भगवान के लिए थोड़ा दो, जैसे सुबह आप देखेंगे दुकान कोई खोलता है तो ऐसे अगरबत्ती गोलगुमाकर बंद कर देता है, बस अभी कल तक भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही दुनिया में सिनेमा देखना, बीड़ी फूंकना, अपने ही दुनिया में, थोड़ा बहुत भगवान को भी साथ में लेने का, क्योंकि नाराज ना हो जाए भगवान, इसलिए थोड़ा कर देने का उनको ऐसे। तो इस तरह के रीति रिवाज में पड़े लोग जो होते हैं वो लोग भी असली धर्म को दबाते हैं, उसके विरुद्ध बोलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, ये बता रहे हैं बक्सान सरस्वती ठाकुर। ऐसे ये तो हर धर्म में है। आप क्रिश्चियन धर्म को लीजिए, तो क्रिश्चियन धर्म में बड़े बड़े चर्च बनाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट में लोग बैठेंगे, लेकिन वो प्रचार नहीं करेंगे। बैठ कर कहेंगे पदवी होगा, लेकिन वो संडे को एक बार एक रूटीन काम के लिए आएंगे, बाकी दिन पर लाख लगा लगा कर रहता है, तो सिर्फ वो ऐशरा में जीते हैं, समझा ना। तो इस तरह के हर धर्म में होता है, जो लोग भगवान के लिए जीते हैं, जो लोग ऐशरम के लिए जीते हैं, दोनों तरीके के लोग हैं, ये बक्सान से ठाकुर बता रहे हैं ऐसे। तो इस तरह ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीडो टीचर करके बोलते हैं वो। अगर इस दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैल जाएगा, लोग समझ जाएंगे असली धर्म को, कृष्ण और जीव के बीच में जो प्रेममय संबंध है, उस संबंध को गंभीरता से जीव ले लेंगे और डोंगी गुरुओं से आकर्षित नहीं होंगे। ऐसे अगर कोई हो गए हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने करके दिखाया अमेरिका में, जब अमेरिका में गए प्रभुपाद जी, सब लोग प्रभुपाद से आकर्षित होकर चार ही साल में धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना और हरिनाम करना और गोमांस खाना छोड़ दिया और शराब पीना छोड़ दिया, भक्ति में गंभीरता से जुड़े। कुछ कुछ लोग इस्कान में प्रभुपाद के शिष्य अभी 45 साल 50 साल भक्ति कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने एक क्रांति मचाया वो पाश्चात्य देश में भी, भारतवासी को भी भक्त बनना कठिन है, लेकिन उन्होंने पाश्चात्य देश के लोगों को बनाया इसे। इसका मतलब है पूतना को वध कर दिया उन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में जो कृष्ण भावना भावित हो चुके थे, वो कृष्ण इतने शक्तिशाली बन गए कि पूतना जैसे जो भटकाने वाले मार्गों को लोग छोड़कर सही पथ को पकड़ा लोगों ने, ये बात समझा रहे हैं भक्तान सरस्वती ठाकुर। तो हमारे अंदर दोनों हैं, अभी हमारे मन को भी पूतना कहा गया है। क्यों? हमारे मन जो है, मन बड़ा बदमाश है, क्योंकि मन भटकाता है जीव को। मन बोलता है देखो पहले तुम अच्छा पैसा कमा लो, पैसा भरपूर मिलने के बाद फिर क्या करना है, भक्ति ही भक्ति है, अभी 5-10 साल के लिए कमा लो पैसा, और पैसा मिलने के बाद क्या पूरा जीवन पड़ा है ना, अगर तुम 40-45 तक कमा लोगे तो 100 साल तक करते रहने का भक्ति, क्या कोई 100 साल जीते हैं क्या कोई है? क्या भरोसा है कितने से साल जियोगे? उसके बाद उतना ही नहीं, अगर बांस जो है उसको हरा जब रहता तभी बेंड होता है, सूखने के बाद क्या बेंड होता है क्या कभी? इसलिए मन हमको घुमाता है, वो भी एक पुतना है, ये बता रहे हैं। मन हमको अलग अलग तरीके से घुमाता है, जैसे हम इस कान में कोई आता है, लेकिन आकर हमें भक्ति की याचना करनी चाहिए, भक्ति की अपेक्षा करना चाहिए। इधर कभी कभी लोग आकर पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ अगर कोई झगड़ा करता है, मैं लीडिंग सर्विस करूंगा तुम पीछे का सर्विस करो, इस तरह का झगड़ा, तो ये भी इस तरह हमारे मन विविध तरह के विकारों में फंस कर भक्ति को भूल कर बाकी चीजों में फंसे रहना, ये भी एक पुतना है। इसलिए अमंति ब्राह्मण ने बोला, ये उन्होंने बोला कि नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त ये हे भगवान, मैं किसको कोसूं, पूर्व जन्म के कर्म को कोस सकता हूं क्या, पर जीवों को कोस सकता हूं क्या, किसी को कारण नहीं है, मेरे मन ही बड़ा बदमाश है, यही एक डोंगी गुरु है, ये मन में मल पड़ा है, वो मल ही हमें गलत मार्ग में हमें भेजता है। इसलिए भगवंत ठाकुर ने बोला कि दूषित मन जो है बद्ध जीवों का, वो एक नास्तिक है, ऐसे बोला उन्होंने। उसके साथ संग मत करो, गुरु के साथ संग करो, गुरु के वाणी के साथ संग करो, कृष्ण के साथ संग करो, कृष्ण की सेवा के साथ संग करो, और दूषित मन को बात मत सुनाओ। इसलिए तुम्हारे बुद्धि को मजबूत बनाओ, कैसे, शास्त्र के श्रवण से, भक्तिमय सेवा से, और प्रश्नोत्तर करके अच्छी तरीके से हम समझने के बाद, हम बुद्धि जब मजबूत हो जाएगा, सुबुद्धि जग जाएगा, तब उस सुबुद्धि से हम मन को दबाकर महामंत्र के जप के द्वारा मन के मल को मिटा सकते हैं हम, तब मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा मन, उसके बाद मन साथ देगा। जैसे पूतना अभी दूषित अवस्था में आई थी, क्यों, मारने की योजना बनाकर, लेकिन भगवत धाम लौटने के बाद वो अवस्था था क्या उसके पास? नहीं, वो शुद्ध हो गई, वो कृष्ण की तट से कृष्ण की स्पर्श से वो शुद्ध हो गई। इस तरह हमारे मन भी अभी दूषित अवस्था में है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करके, भागवत गीता इत्यादि के श्रवण करके हम चित्त को शुद्ध करने के बाद जब पूतना शुद्ध अवस्था में यशोदा के एक सहेली बनकर कृष्ण को सेवा दे रही है, भगवद्दा में अभी भी दे रही है, हम भी, हमारे मन भी ऐसे बन जाएगा, ये बात है। कृष्ण भगवान की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर भक्त वृंद की। जो प्रश्न है कल के लिए रखिए, जो वर्णन जिस दिन थोड़ा कम छोटा होता है उस दिन मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा।